उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग अन ने अपने नए वर्ष के पहले दिन के भाषण का इस्तेमाल अमेरिका को धमकी देने के लिए किया। श्री किम का कहना है कि उनके देश ने अमेरिका में कहीं पर भी परमाणु हथियारों से हमला करने की क्षमता विकसित कर दी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका कभी भी उनके देश के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं कर पाएगा।
The U.S. mainland is within the range of our nuclear strike, and the nuclear button is put on the desk in my office at all times. They should clearly understand that this is never a threat, but a reality.
उत्तर कोरिया के खिलाफ कई मिसाइल प्रशिक्षणों के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्योंगयांग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद अभी भी अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को जारी रख रहा है। इस विषय में और जानकारी के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के डॉक्टर प्रदीप तनेजा से बात की।
देखिए, नॉर्थ कोरिया का ये मसला है, असलियत में ये नॉर्थ कोरिया द्वारा एक न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए उसी की वजह से हो रहा है। नॉर्थ कोरिया काफी समय से कोशिश कर रहा है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए और उसके साथ साथ मिसाइल भी डेवलप करें जिससे कि वो डिलीवरी सिस्टम उनके पास हों। तो मानी हुई बात है, इसको लेकर सारा विश्व जो है, खासतौर से पश्चिमी देश जो हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। दूसरा, एशिया में जापान और साउथ कोरिया भी इससे बहुत नाराज़ हैं। लेकिन पहले ये सिर्फ धमकियां वो करती थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया ने क्लियरली अपनी जो इस मामले में क्षमता है उसका प्रदर्शन किया है। उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट भी कई बार किए हैं, मिसाइल टेस्ट भी किए हैं। अब लगता है उनके पास ऐसी क्षमता है कि वो उनके जो मिसाइल्स हैं वो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। तो इसलिए अब ये मामला काफी सेंसिटिव हो गया है, काफी संवेदनशील हो गया है, और इस पर अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी, बाकी देश भी काफी ध्यान देने लगे हैं।
वहीं हमने डॉक्टर प्रदीप तनेजा से ये भी पूछा कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच इस टकराव का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या असर पड़ सकता है।
देखिए, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का एलाय है, जैसे आपको मालूम है हमारी एंजस ट्रीटी है अमेरिका के साथ। तो उस जो संधि है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में, उसके अंतर्गत अगर अमेरिका पर कोई हमला होता है तो ऑस्ट्रेलिया भी, या अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी हमला होता है तो बाकी जो दूसरे एलाइज हैं एंजस अलायंस में, वो उनकी उनकी तरफ उनका सपोर्ट करेंगे। तो अगर ये मामला नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर वो ज़्यादा आगे बढ़ता है या कोई युद्ध की संभावना होती है, तो ऑस्ट्रेलिया मानी ही बात है उसमें शामिल हो जाएगा। तो इसलिए ये इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि युद्ध की कोई संभावना ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया काफ़ी समय से धमकी देता आया है और नॉर्थ कोरिया की सरकार को, उनके लीडर किम जोंग उन को ये भी मालूम है कि अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत करी, कि अगर उन्होंने अमेरिका की तरफ या हवाई की तरफ या गुआम की तरफ कोई न्यूक्लियर इवन छोटा सा भी अगर बॉम्ब डालने की कोशिश की, तो नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका के पास जो क्षमता है वो ऐसी है कि नॉर्थ कोरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई युद्ध की संभावना है, लेकिन ये नॉर्थ कोरियन रिजीम जो है, नॉर्थ कोरियन सरकार जो है, उनकी ये चेष्टा है कि वो अपने आप को, अपना जो उनका रिजीम है उसको बचाए रखें। देखिए, उन्होंने देखा है कि पहले लीबिया, इराक, इन दोनों देशों ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम्स थे उनको छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास, उनके ऊपर काफी बाहर से दबाव था, पश्चिमी देशों से दबाव था। तो इराक ने और लीबिया ने, दोनों ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को छोड़ दिया। आप देखिए उन दोनों के लीडर्स को क्या हुआ, सद्दाम हुसैन को फांसी लग गई और कर्नल गद्दाफी जो थे लीबिया के, बड़ी बुरी तरह से उनकी मौत हुई। तो कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, उनको मालूम है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी है उसको इसलिए बरकरार रखा है, बनाया है, बढ़ाया है कि वो उनका जो रिजीम है वो बचा रहे, एक तरह से जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटरेंस, ये डिटरेंस के लिए है, ताकि कोई भी देश उनकी तरफ कोई उनके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा या उनको कोई खतरा नहीं होगा। वो जो भी आगे बात बढ़ती है वो नेगोशिएशंस के थ्रू होगी, बातचीत के थ्रू होगी। तो नॉर्थ कोरिया इसी मुद्दे को लेकर जो है इसी उद्देश्य को लेके अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी है उसको बना रहा है और डिटरेंस उनका मेन गोल है।
वहीं हमने डॉक्टर प्रदीप तनेजा के सामने ये सवाल भी रखा कि क्या ऑस्ट्रेलिया को इन परिस्थितियों के मद्देनजर विशेष रूप से तैयारी करनी चाहिए।
देखिए, जहां तक तैयारी का सवाल है, नॉर्थ कोरिया के सबसे नजदीक तो उनका साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो बस थोड़ी सी दूर है, सोल। नॉर्थ कोरिया के पास इवन अगर हम जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी बात ना करें, फिर भी नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी क्षमता है कि वो साउथ कोरिया की राजधानी सोल को ध्वस्त कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा खतरा तो नॉर्थ साउथ कोरिया को है, जापान को है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक अमेरिका का एलाय है और नॉर्थ कोरिया के जो नेता हैं किम जोंग उन और उनकी जो सरकार है उनको भी मालूम है कि अगर वो ऐसी कोई हरकत करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई हमला करते हैं, मतलब कोई मिसाइल वगैरह फेंकते हैं, तो उसका भी जो परिणाम दुष्परिणाम है जो बड़ा बुरा होगा उनके लिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसा इमीडिएट खतरा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कोशिश करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप जो हैं उनको भी थोड़ा परसुएट करने की कोशिश करे कि नेगोशिएशंस का रास्ता जो है वो अच्छा रास्ता है। नॉर्थ कोरिया की जो समस्या है इसको सुलझाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, युद्ध का रास्ता संभव नहीं है। इसको सुलझाने के लिए सिर्फ नेगोशिएशंस या वार्तालाप से ही कोई मतलब सोल्यूशन मिल सकता है। दूसरा, नॉर्थ कोरिया के पास जो अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो नॉर्थ कोरिया इमीडिएटली सरेंडर नहीं करने वाला है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो भी अमेरिका और दूसरे देशों की सरकारों को परसुएट करने की कोशिश करे कि हमको ये मानकर कि नॉर्थ कोरिया इमीडिएटली अपने वेपन्स को सरेंडर नहीं करेगा, ये मानकर उनसे बातचीत की पहल करनी चाहिए।
क्या अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच में वाकई परमाणु युद्ध की संभावना है? इस विषय पर डॉक्टर प्रदीप तनेजा ने हमें बताया।
देखिए, युद्ध की स्थिति बनती है या नहीं ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया के ऊपर ही निर्भर नहीं करेगा बल्कि अमेरिका के ऊपर भी निर्भर करेगा, दोनों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जहां तक उत्तरी कोरिया की सरकार का सवाल है, मुझे लगता है कि वो अपना ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, ये प्रदर्शन करने के बाद कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हथियार हैं और मिसाइल कैपेबिलिटी भी है, उसके बाद वो अपना थोड़ा स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी जो शक्ति है उसके शक्ति प्रदर्शन के ऊपर वो अमेरिका से और दूसरे देशों से बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है नेगोशिएशंस होंगे। ये मतलब मामला जो है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स का, ये किसी और तरह से नहीं सुलझ सकता और वो नेगोशिएशंस होंगे। लेकिन साथ साथ मुझे नहीं लगता कि उत्तरी कोरिया की सरकार अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको छोड़ देगी।